श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कृष्ण श्याम कृष्ण गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथ क्षेत्र श्रीराचल धाम की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी यमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुगधर्म हरि नाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। इंग्लिश क्लास हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश बुक ये हिंदी का है। श्रीमद भागवत महापुराण से पाठ नवम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 31 31। यो वै हरिश्चंद्रमखे विकृतः पुरुषः पशुः श्रुत्वा देवान् प्रजेसादीन् मुमुच्ये पाशबन्धनात्। वो वै हरिश्चन्द्रमखे विकृतः पुरुषः पशुः श्रुत्वा देवान् प्रजेसादीन् मुमुच्ये पाशबन्धनात्। यो वै हरिश्चन्द्रमखे विकृतः पुरुषः पशुः श्रुत्वा देवान् प्रजेसादीन् मुमुच्ये पाशबन्धनात्।
Thank you.
संदेह हरिश्चंद्रमखे राजा हरिश्चंद्र द्वारा संपन्न यज्ञ में विकृतः बेचा गया पुरुषः व्यक्ति पशुः बलि पशु तुत्वा स्तुति करके देवान देवताओं को प्रजेसादिन ब्रह्मा इत्यादि मुमुच्छे छोड़ दिया गया पाश बंधनात् पशु की भांति रसी के बंधन से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। सुनसेप के पिता ने सुनसेप को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में बलि दिए जाने के लिए बेच दिया। जब सुनसेप को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि उसे छुड़ा दे जाए और वह उनकी कृपा से छुड़ा दिया गया। तात्पर्य हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, किंतु रोहित ने अपनी प्राण रक्षा करने के लिए सुनसेप की पिता से सुनसेप को खरीद लिया था। सुनसेप इसलिए हरिश्चंद्र महाराज के हाथों बेच दिया गया था क्योंकि वह मझला था। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में मनुष्य की पशु रूप में बलि की प्रथा बहुत काल से चली आ रही थी। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहितं सार्थं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदांतिकं वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणरविता श्री विशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नाम धृक् जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी पते प्रभु जय नीलांबुज श्याम नीलजी मुत सन्निभ जय पद्माधरि त्रिभ्यां निसेवित पदाम्बुजं जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभु दासत्वं देहि मे प्रभु। तो ऐसे तो बहुत लेट हो चुका है। अब तो आप ये भागवत में ये जो संग सुन रहे हैं हरिश्चंद्र के यज्ञ के बारे में कि हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहे थे और उनको यज्ञ में पशु बलि नहीं नर बलि देना था। तो उपाध्याय ने तात्पर्य में कहते हैं ये यज्ञ में मनुष्य को बलि देने का ये प्रथा बहुत काल से सत्ययुग अवधि ये हरिश्चंद्र महाराज सभी समान कहे सभी समय से था और किसी को बलि देना था उनको अपने पुत्र एक बेटा था उनका रोहितास उनको बलि देना था उनको बलि देना था। देखिए ये सृष्टि के आरंभ से देवता असुर मनुष्य सबको पता था जो समझदार व्यक्ति है कुछ कार्य हासिल करने के लिए तपस्या करना पड़ता है यज्ञ करना पड़ता है। मनुष्य को नहीं देवता और भगवान आदि को प्रसन्न करना होता है तब कार्य हासिल होता है। यहां तक कि सभी जमाने में जो बड़े बड़े असुर थे हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिप रावण आदि आदि सब ये कुछ छोटे मोटे शक्तिशाली नहीं थे। आजकल के हम जैसे घटिया आदमी में कुछ लड़ाई कुछ काम करने के लिए हम कुश्ती कसरत करते हैं जिम खाना में जाते हैं अपने और क्या क्या मांस मैंने आमिष भक्षण आदि तनिक खाकर अपने को बड़ा करते हैं। हमारे अंदर शक्ति तो कुछ भी नहीं है एक कीड़ा के सदृश भी नहीं है। जो इतने महाशक्तिशाली होते थे जिसका दस दस सर होता था हजारों हजारों हाथ होता था इतने बलशाली होते थे कि वर्णन आता है सहस्रार्जुन एक उनके जब हाथ में होता था किसे लड़ू जाकर बड़े बड़े पर्वत के ऊपर हाथ को पीटते थे तो पर्वत चूर चूर हो जाता था। ऐसे ऐसे महाशक्तिधर ऐसे ऐसे मनुष्य को भी पता था कि ये शक्ति कुछ काम की नहीं है कुछ भी नहीं है। अगर हमको कुछ प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़े बड़े महान शक्तिशाली हिरण्यकश्यप सब तपस्या किए रावण ने सब तपस्या की। तपस्या करना यज्ञ करना यज्ञ करने का उद्देश्य है यज्ञ वही विष्णु भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना पड़ता है। भागवत गीता में तो यहां तक कहा गया है अन्नाद भवन्ति भूतानि और पर्जनात अन्न संभवा सारे प्राणी जो है अन्न से बचते हैं अन्न मिलता है बारिश होने से यज्ञात भवति पर्जन्य और बारिश होगा यज्ञ करने से होगा। इसीलिए यज्ञ करना इतनी आवश्यकता था। आप सोचेंगे यज्ञ करना तो हम यज्ञ क्यों नहीं करते। तभी जमाने में एक क्लास का घी मिलता था मतलब घी जब कोई शब्द उच्चारण था घी चाहिए तो उसका मतलब है प्योर खांटी देसी घी। इसको घी कहने से पता धीरे धीरे युग बदल गया तो दुकान में और घी लिखने से कोई लोग समझते नहीं बोले पता नहीं घी का अर्थ क्या होगा तो उसके पीछे एक अर्जेंट भी लगना पड़ा शुद्ध घी। 100 साल के पहले शुद्ध घी लिखा गया उसके पहले केवल घी में चलता था। उसके बाद हम एडवांस कर गए तो एक विशेषण से समझ में नहीं आया तो और एक शब्द लगा खांटी शुद्ध घी फिर भी नहीं समझ में आया देसी लगाया गया देसी गाय की घी और सारे विशेषण को लगाकर देखा जाए वो गाय की भी नहीं वो किसी का होगा। तो इसलिए जो वस्तु ही नहीं सामग्री ठीक से नहीं मिलता है ब्राह्मण भी ठीक से नहीं है मंत्र वेत्ता मंत्र उच्चारण करे प्रथम यज्ञ हुआ करता था यज्ञ में माचिस लगा करके आग प्रकट नहीं किया जाता था। जब यज्ञ में आवाहन यज्ञ में अग्नि को आवाहन किया जाता था, अग्नि प्रकट होते थे, उनको पहले पूजा किया जाता था, पूजा करके फिर यज्ञ में उनको लगाया जाता था। तो आजकल नहीं, थोड़ा तेल फेल डाल करके वो माचिस लगा कर यज्ञ करते, यही से नहीं होता। मंत्र के द्वारा अग्नि को आवाहन किया जाता था, अग्नि प्रकट होते थे। और सारे शास्त्र में कहा गया है भगवान के दो मुख होता है, जिसके द्वारा हमारा एक मुख है, मुख के द्वारा सब इनपुट करते हैं, हम लोग खाते हैं। मुख के दो कार्य होता है, क्या क्या? एक खाना और एक बोलना है ना। तो भगवान के जो दो मुख है, एक है यज्ञ और एक है, यज्ञ मतलब अग्नि, एक है अग्नि और एक ब्राह्मण, दो मुख है। तो इसलिए अग्नि में डालते हैं कि वो भगवान के मुख अग्नि में डालने से सीधा भगवान जाएगा, भगवान के पेट में जाएगा। आग भगवान के मुख है, मुखात अग्नि अजायतः। तो इसलिए यज्ञ में आहुति दिया जाता था कि भगवत भगवान उसको प्राप्त करेंगे। और भगवान का दूसरा मुख है जो ब्राह्मण, इसलिए प्रथा बहुत दिन से है प्रचलित प्रथा की ब्राह्मण भोजन, कुछ किसका गड़बड़ हो गया, ज्यादा हवन आज से ब्राह्मण भोजन कर दो, नहीं तो दो पांच एक कितने भी ब्राह्मण भोजन करा दो, भगवान के मुख से चला जाएगा, तृप्ति हो जाएगा, आपका सब ठीक हो जाएगा। हर क्रिया में सुधार लाने के लिए, शुद्धि करने के लिए उपाय तो एक ही है, भगवान को याद करना, भगवान को ध्यान करना, भगवान को तुष्ट करना। तुष्ट करने के लिए अनेक विधान है, सबसे अच्छा विधान है कुछ खिला पिला दे, खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण लोग का स्वभाव होता है खिला देने से खुश हो जाते हैं, बाकी उनको क्या चाहिए। तो भगवान तो ब्राह्मण के ऊपर परम ब्रह्म है, तो उनको भोजन खिलाने के लिए चाहे यज्ञ में आहुति दो चाहे ब्राह्मण के मुख से डालो। तो यज्ञ आजकल हो नहीं सकता कि यज्ञ के सामग्री नहीं रहा, मंत्र नहीं रहा, ब्राह्मण रहे, कुछ व्यवस्था नहीं रहा, तो यज्ञ गया। दूसरे रहे, दूसरा मुख के डालो, दूसरा मुख है ब्राह्मण, ब्राह्मण तो पहले यज्ञ के साथ वो भी गए, कोई मंत्र वेदा गुणवत्ता ब्राह्मण नहीं रहे, सब ब्राह्मण 25 पैसा का जनेऊ डाल करके ब्राह्मण बन गए। यहां तक कि शास्त्र में कहते हैं राक्षसा कलिम आश्रित जायन्ति ब्रह्मजोनिषु, जो राक्षस गण है कलि युग में ब्राह्मण जोनि को आश्रय करके जन्म ग्रहण करेंगे। दक्ष यज्ञ प्रसंग में ऐसा कहा गया, जो झगड़ा हुआ था शिवगण और ब्राह्मण गण के दक्षों के साथ में, ऐसे इस प्रकार बात हुआ, वो साप दे दिए ब्राह्मण को, वो भी उनको साप दे दिए, दोनों अभिशप्त हो गए। तो सत्ययुग का घटना है, तभी से इसे सब गुण लोप हो गया। तो अभी फिर भगवान को तुष्ट कैसे करेंगे, यज्ञ में नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मण भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं। कलि के प्रारंभ में द्वापर अंत में भगवान जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिव्य ज्ञान दे रहे थे गीता की द्वारा, उसमें जो दर्शन देते हैं अपने विभूति जो बताते हैं विभूतियों में, भगवान कहते हैं कि यज्ञानं जप यज्ञस्मि स्थावराणं हिमालय, जितने यज्ञ है यज्ञ में मैं हूं। कौन सा यज्ञ? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जप करना इस युग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, ये साक्षात भगवत वाक्य है। स्वयं भगवान भगवत गीता में दसवां अध्याय में 25 नंबर श्लोक में कहते हैं यज्ञानाम, जितने प्रकार की यज्ञ है समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ, जैसे जितने पर्वत हैं समस्त पर्वत में मैं हिमालय हूँ, सावराणां हिमालय, सर्वश्रेष्ठ हिमालय है ना, सबसे बड़े। ठीक इसी प्रकार जितने यज्ञ हैं सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र के जप, जो आप डेली सुबह सुबह करते हैं, तो आपसे बढ़कर ब्राह्मण कौन होगा। सब अग्निहोत्री, सब बड़े बड़े यज्ञ जागिक ब्राह्मण है, आप लोग जागिक ब्राह्मण नहीं हो, वैष्णव तो है, वैष्णव तो ब्राह्मण से और ऊपर के बाद। चैतन्य भागवत में कहा गया है चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म स्वधर्म करिले उसे ही रौरव ही मजे, रौरव नरक में जाएगा। बढ़िया अच्छा से अपने स्वकर्म स्वधर्म का पालन करे, चारी वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चार वर्ण है, चार आश्रम है, इनमें रहने वाले व्यक्तियों अगर भगवान की भजन नहीं करते हैं, भगवान के भक्ति नहीं करते हैं, उनके नाम जपादि नहीं करते हैं, उसको छोड़ करके आपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म को बहुत बढ़िया ठीक ठीक पालन करते हैं, तो परिणाम क्या होगा, तो कहते हैं वो इतने बढ़िया से करके रौरव नरक में जाकर पड़ेंगे। बहुत बढ़िया से पालन किए अपने वर्ण अनुसार और आश्रम अनुचित कर्तव्य को ठीक ठीक से किए, तो परिणाम होगा वो नरक में जाएंगे। क्यों, क्योंकि वे हरि भजन नहीं किए। ये जो वर्ण और आश्रम के सृष्टि तो हरि प्रीति के लिए किया गया, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था रखा गया है। अगर हम वर्णाश्रम को करेंगे और भगवान की भजन नहीं करेंगे, हरि की प्रसन्न नहीं करेंगे, तब गया बेकार हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं। आप कहीं कहीं बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़े बड़े उद्योग में जब किए होंगे, तो जो उच्च ग्रेड के ऑफिसर रैंक में जब करते हैं, तो उनको कंपनी के से बढ़िया सा बंगला, दो चार नौकर, बढ़िया सा कार ड्राइवर के साथ देते हैं उनको। क्यों, ये दिए हैं, इतने सुविधा दिए हैं, और वो इसको लाकर बंगला में रहेगा और कार को बढ़िया से कलर फलर करके मेंटेन करके रखेगा, बंगला में कलर फलर लगा करके उस रहेगा, और कुछ नहीं करेगा, कंपनी का काम नहीं करेगा, तो कंपनी वाले एक दो महीना चार महीना में उसको निकाल देंगे वहां से, गाड़ी से भी गाड़ी से छूट ले लेंगे, उससे गाड़ी छुड़ा करके बंगला से कमर के निकाल लेंगे, गेट आउट, है ना। नहीं तो ये 84 लाख प्रकार के बंगला और कार बना करके भगवान ने दिए हैं, मतलब ये शरीर वाहन है, गाड़ी है, हम जो इस शरीर में है ना, ये भी एक फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी है, मनुष्य शरीर, जितने शरीर है सबसे परफेक्ट उन्नत कोटि का शरीर है मनुष्य शरीर। प्रभु ने आपको इतने बढ़िया सा गाड़ी दिया और हम पता नहीं किस लिए दिया, हम उसको ला करके बहुत बढ़िया से तेल साबुन सेंट मखा करके रखे, बहुत बढ़िया कपड़ा वपड़ा चढ़ाए, बहुत सुंदर सुंदर खाद्य खा करके बलिष्ठ पोषण करके रखे, भूल गए गाड़ी कौन दिया था, किस लिए दिया था ये पता ही नहीं, पूछे तो इतना मेंटेन करके रखा हूं गाड़ी को, पता किस लिए गाड़ी रखा हुआ है, फर्स्ट क्लास मेंटेन है, तो जो दिया था गाड़ी थोड़े दिन में आ गया, बोला रास्कल गेट आउट, गाड़ी लेकर चला जा, क्यों ना, क्यों क्या, इसलिए दिया था क्या तुझे, तुझे इसलिए दिया था, तो गाड़ी की मेंटेन करके अच्छा से रंग बिरंग कर रखे, इसलिए दिया था गाड़ी, मेरा काम करने के लिए दिया था, तू तो पता ही नहीं था कौन दिया किस लिए दिया ये पता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार अभी हम जो ये सभ्य जगत में सभ्य मनुष्य अर्धांश पर्सनालिटी है। हमको अभी तक ये पता नहीं है कि ये बढ़िया सा कार जो हमको प्राप्त हुआ है कहां से कौन दिया और किस लिए। ये दोनों प्रश्न के जवाब हमारे पास नहीं है। किसी का तो 50 साल हो गया, किसी का 30 साल, 20 साल, 40, 50, 100 साल तक भी गाड़ी को बढ़िया से मेंटेन किए हैं, गाड़ी पुराना होकर के धड़धड़ फिर भी ऑयलिंग करते रहते हैं, डालते रहते हैं, गैरेज में लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं, डॉक्टर के पास फिर भी जाते हैं, मरते दम तक डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ दिन बचा दो, अरे इंजन सड़ गया नहीं फिर भी मेंटेन करो, जोड़ जाड़ कर और कुछ टिक जाए। लेकिन उद्देश्य अभी तक पता नहीं चला। और हम अपने आप को बहुत उन्नत, सभ्य और पढ़े लिखे मानते हैं, है ना नहीं? आप लोग नहीं होंगे, हम तो है ही है, मानते हैं। सनातन गोस्वामी तभी जमाने में, आज से 500 साल पहले के बाद में कह रहा हूं, उन्होंने इतने बड़े विद्वान पुरुष थे, वो राजमंत्री हुए थे, एक बार देख करके बिना इंटरव्यू, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिना कोई क्या क्या करते हैं सब आजकल स्टेट ऑफिसर लेने के लिए, IAS और बॉम्बे का क्या होगा, MAS, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसा कुछ होगा ना स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब, इसको क्या क्या, कोई एग्जाम नहीं दिए थे उन्होंने। एक बार राजा ने देखा उनके गुण को, सुना, सीधा प्रधानमंत्री, प्रधान राजमंत्री उनको, इतने बड़े योग्य, इतने बड़े विद्वान पुरुष थे व्यवहारिक रूप, लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट की, उनका साक्षात हुआ, तो उन्होंने भगवान को क्या पूछे, अगर कभी ऐसा हो जाए, होगा तो नहीं लेकिन मानो, मान लो, सोच लो कि ऐसा कभी हो जाए कि हमारा सामने भगवान प्रकट हो जाए, सभी अपने अपने मन में सोच लो, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, है ना, तो सोच लीजिए कि आपका सामने साक्षात गिरिधारी आपके खड़े हो गए, आप घर में उठो तो आपके सामने खड़े हैं बिल्कुल दिव्य शरीर में, तो आप क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, दंडवत करेंगे, बैठ जाएंगे ना, कुछ बोलेंगे, कुछ पूछेंगे, क्या करेंगे, सोचिए। अगर हमारे सामने आ जाए भगवान तो हम क्या करेंगे, अगर आ गए, मानो आ ही गए अभी, तो हम क्या करेंगे, वेट कीजिए मैं कंसल्ट करके आता हूं, क्या बोलना चाहिए नहीं भगवान ज्यादा समय टिकेंगे नहीं, इमीडिएट अब क्या बोलेंगे, पता नहीं आप लोग क्या बोलेंगे। आमतौर पर देखा जाए तो हम लोग बहुत चतुर हैं, एक बार इतने बड़े लिस्ट पढ़ाएंगे भगवान भी हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े लिस्ट, ये चाहिए, ये चाहिए, तो डेली तो आरती गाते हैं, हमारा ये मंदिर इस्कन मंदिर में नहीं चलता है, नहीं तो बाकी कोई मंदिर में चले जाओ जो दो टाइम आरती गाते हैं, प्रार्थना ही होता है क्या, हाँ वो आपको पता ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं गाते हैं, वो अपना जो वक्तव्य है उसी को इसी टोन में गाते हैं, यही सुर ताल दे करके अपने लिस्ट भगवान को पढ़ाते हैं, ये लंबा लिस्ट पकड़ा देते हैं, भगवान उसका ऑर्डर सप्लायर है ना, अब आ गए सामने तो सीधा ऑर्डर पकड़ा दिया आपको, दे दिया, अभी इतना दिन बोल रहे हैं तब सामने आ गया, लिस्ट पकड़ी है। ये हमारी स्थिति, राजमंत्री सनातन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने हुए तो इतने गुणवान थे सनातन की जब दरबेश बेस में मतलब राजमंत्री से बहुत बड़े उच्च पद मर्यादा था, कितने धन संपत्ति था उसका कलनाल नहीं कर सकते, सब छोड़ करके जेल में डाल दिया राजा उनको, फिर भी बहुत बुद्धि कुशलता करके जेल से निकल करके रातों रात गंगा पार करके तैर करके भागे। इतने बड़े आदमी थे, कितने सैकड़ों नौकर वाकर होंगे, एक उनका नौकर तो उनका पीछे आया, किसान बोला साहब जा रहे हैं तो पकेट में 8 स्वर्ण मुद्रा ले गया था उन्होंने, तो गंगा पारी कर लिया तैर करके, वो भी पारी कर लिया तैर करके, उनके साथ चले आगे। कई जंगल है, पहाड़ है, घाटियां है, एक जगह आया पातड़ा पर्वत करके जगह, जहां बिहार बॉर्डर है बंगाल का, वहां बिहारी बड़े दुर्दांत डकायत लोग सब रहते हैं, सब गला काट करके धनफन छीन लेते हैं, तो कई प्रकार से डकायती करते हैं। तो एक बड़ा डकायत था गैंग लीडर, उनका पास बहुत बड़ा ज्योतिष था, वो पहले से गणना करके बोल रहे था अभी जो आने वाला है ना उनके पास इतने माल है, अगर लेना है तो अब ले लो, इतना तो है उनके पास पक्का। तो उनका केवल सुबह से गणना करके वो निकाल सकता है अभी जो आने वाला, आज जो आएंगे शाम तक उनके पास इतना है, ये बता देता। तो सिद्ध गणक था, वो गणना कर करके बोला था आज शाम तक दो आएंगे पक्कड़, गिर भिखारी की तरह दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये मत समझना उनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है खंटी सोने के, सही में 8 स्वर्ण मुद्रा है ना, तब तो उनका डा काट ही देना चाहिए, उनसे तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं देंगे वो, ऐसे तो नहीं देंगे मांगे। अरे दिखने में बोला भिखारी जैसा दिखते हैं, लेकिन है उनका पास, भिखारी है उनके पास कुछ है ही नहीं, इसे गला काट कर 8 को 8 ले लेंगे, पूरे योजना बना रहे थे वो। सबसे बात है वो गणक बहुत पक्का था, पक्का एस्ट्रोलॉजर था, बोल दिया था। तो आए सनातन, उनके पीछे उनके सेवक किसान, गंगा में तैर कर आए, कपड़ा भी दूसरा नहीं बदलने के लिए, ऐसे ही गीला कपड़ा में चलते चलते आए, को खाना पीना तो दूर की बात है, क्रांत श्रांत गीला कपड़ा ऐसे ही देखने से जेल से उतर के आए हैं। तो देख करके वो जो ज्ञान लीडर तो समझ गया, बोला हमारा ज्योतिष बोल रहा था यही तो लगेंगे वो, बिल्कुल पक्का। जा करके बोला आइए हजूर आइए, कहाँ जाएंगे ना, हमको यहाँ जाना था, अरे शाम हो गया बहुत घोर जंगल घाटी रास्ता ही भूल जाएंगे, चलो 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 आइए। अरे कोई पहचान नहीं जान नहीं कुछ नहीं, हमको इतनी बढ़िया रिसेप्शन बुला के लिया, वो देखे कि ऐसे ही शाम हो रहा है, रहने का जगह ही हमको ढूंढना पड़ता, कहीं जंगल में कहाँ गेस्ट हाउस मिलेगा, कहाँ रुकेंगे, भूख भी पेट में खूब है, कहाँ खाए, लेकिन वो अपने आप बुला के ले गया, ले करके फर्स्ट क्लास अटैच बाथरूम कमरा खोल दिया और बढ़िया सा खाने का गरम गरम बना के रखा था, पेश किया। सनातन गोस्वामी बड़े हैरान हो रहे हैं, क्या है कौन है क्यों हमको इतना सेवा कर रहे हैं भाई, विद्वान पुरुष जो हैं ये केवल लक्षण और कार्य से समझ लेंगे कि उसका पीछे कुछ तो रहस्य होगा। तो कमरा मिल गया, प्रसाद ग्रहण हो गया, तो जो प्रसाद दिलाया था वो तो मालिक को चला गया, तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया कमरा में, सनातन ने बोले ईशान बोले सीरियस सच बताना मुझे, आपके पास कुछ धन है क्या? ना हजूर, वो भी थोड़ा छिपाया, बोला हजूर 7 स्वर्ण मुद्रा है। अच्छा 7 है, लेकर आया, लाओ निकाल दो मुझे। तब तक रात हो चुका था, सोने का समय था, वो खिला पिला कर वो चला गया, बोला तो सो गए होंगे, मैं बस 2-3 घंटा में जा करके अपना गला काटने का सब व्यवस्था, कबाड़ बंद करके हथियार पर जाना, बाकी कैसे जाऊं क्या करूं, ऐसे अपना प्लानिंग में था होटल वाला। तो उनको गाली दिए, उनसे पैसा ले लिए, 7 स्वर्ण मुद्रा वो दे दिया, उससे ले करके धीरे से कबाड़ खोलकर बोले सो जाओ, वो निकले जा करके उसका कबाट नक किए, दरवाजा नक किए बाहर, वो हैरान हो गया इतनी लेट नाइट में कौन बुला रहा है, पकड़ा जाएगा, अभी तो निर्जन वन है, यहाँ पर कौन आके ठक ठक कर रहा है, वो देखेगा हाँ मैं सब रेडी कर रहा हूँ मारने के लिए, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, कौन है, पुलिस तो आ नहीं सकता यहाँ, कौन है क्या, बड़े डर के मारे डर डर के दरवाजा खोला, थोड़े से खोल के देखा कि कौन है, खोल कर देखा तेरी यही है उनका गेस्ट जो है जिसको खिला पिला कर आया, अभी घंटे भर में जिसका गला काटने वाला है, अभी तैयारी कर रहा है, वही खड़े हैं, अरे अभी तक सोया नहीं हूं, जगह है, मैं कैसे मारूंगा उसको, उनसे मुझे सोने का सोना मुद्रा निकालना था, ये तो जगह है अभी, और आया किस लिए आया, वो तो परेशान हो गया, खोल दिया दरवाजा, बोल आइए सर। तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, सनातन जी कुछ शब्द नहीं बोले, निकाले साहब सुनो, बोले साहब ये लीजिए, अरे ये क्या आप देते ना, आप लीजिए, आप रखिए उसको, क्यों ना, नहीं वो आप रखिए उसको, मैं बाद में बताऊं उसको, आप ले लीजिए उसको, हमारे पास था, क्या करें, हमारे कोई जरूरत नहीं, आप लीजिए। वो तो परेशान हो गया, उनको लाकर बैठाया, बोले आप तो लगते ही महापुरुष है, मैं तो एक ज्योतिष को पाल करके इतने पैसा दे करके बहुत दिन भर गणना करके बताया था उसको जान करके, लेकिन आप कैसे जान गए मेरे मन के बात, कि मैं इसी के चक्कर में आपको वेलकम किया था, खिलाया पिला जो सब व्यवहार सब केवल इसी के कारण था, आप कैसे जान गए, बिना मांगे बिना पूछे मुझे ला कर अपने आप दे रहे हैं आप, ना नहीं आप रखिए, मैं समझ गया कि आपको उसका जरूरत है, चाहिए था तो अब ले लीजिए, ना हजूर बैठिए अभी देख रहे हैं ये क्या, ना हम देख रहा हूं ये सब पड़ा हुआ, ये किस लिए था मालूम, ये अब भी एक घंटा के बाद आपके अब ईद में सब कर रहे थे ना, हलाल करने वाला था आपके लिए, सब तैयार हो रहा था मैंने अभी, और किस लिए आपको बंद करने के लिए जा रहा था, यही सात स्वर्ण मुद्रा के लिए, और आपको किसे पता चला आप लाख रहे अपने आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे वो ज्योतिष मेरा बता था कि आठ था, आप सात दे रहे हैं, हो भी हो एक पर एक कोई खो गया पता नहीं, लेकिन सात आप किसे लेकर दे रहे हैं। तो सनातन जी बोले जब आपने हमको इतने सुंदर आतिथ्य किए तभी ने मैं सोच रहा था क्या कारण है, कोई जान पहचान तो है नहीं, इतने कैसे सुचरित्रवान कौन मिल गए जंगल में, इसे हम कैसे खातिर कर रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि ये सब का एक ही लक्ष्य हो सकता है, कोई आपसे अच्छा बात करे, कोई आपको मतलब क्या कहें उसको फ्लैटरिंग, आपको प्रशंसा, आपको थोड़ा ज्यादा प्रशंसा करे और अच्छा व्यवहार करे तो समझ लेना चाहिए उसका पीछे कोई कालेपन है, कोई ना कोई तो उद्देश्य है, नहीं तो ऐसा नहीं कहेगा, भले आपने कितने नजदीक मित्र क्यों ना हो, बहुत अपने परिवार की अपने सगा कोई ना हो, कुछ तो है उसका पीछे, नहीं तो नहीं, जब ये भौतिक जगत का सिद्धांत है तो आप ऐसे कैसे बच जाएंगे, ये बिल्कुल निर्जन वन प्रदेश में शाम के समय में ऐसे हमारा बिना पहचान में आतिथ्य, मैं समझ गया मेरा पास तो कुछ भी नहीं है तो मुझे इसे क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा सेवक को पूछा तेरा पास कुछ है, वो बताया है मेरे पास यही कारण है, और कुछ नहीं हो सकता, बीमारी का जड़ यही है, तो इसलिए मैं इसको रखूंगा तो मृत्यु के साथ में रखता हूं, तो इसलिए उसको दे दूं तो बच जाऊंगा, तो इसलिए मैं दिया आपको देने आ रहा हूं, आप उसको रखिए। तो इतने प्रभावित हो गया वो दस्यु, इतने प्रभावित हो गया, उन्होंने बोला हजूर आप लगता है बाकायदा महान पुरुष है, बहुत ही बड़े महर्षि मनुष्य है आपने, तो मैं आपने जिंदगी में पहली बार आप जैसे पुरुष देख रहा हूं, इतने गुणवान, तो कृपा करके आप उसको रखिए, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा और आप बेफिक्र सही, मैं खुद आपका सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ा रहेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगा, सुबह आपको साथ में लेकर के वो पर्वत पार करा के आऊंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा। आपके जैसा व्यक्ति मान गए, आप तो महापुरुष है, आपकी सेवा में करूं मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। वो बिल्कुल उनका हृदय से बोल रहा था बात, बड़े उनको लगा कि ये कितने बड़े व्यक्ति है, बिना मांगे बिल्कुल इतने फक्कड़ राम, कुछ भी नहीं पैसा, एक वस्त्र पहना है, ऊपर में कोई साठ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतने दूर जा रहा है, ये पैसा अपने आप ला के दे दे रहा है, वापस रख नहीं रहा, कुछ नहीं उसके पास। वाह रे वाह, कितने बड़े त्यागी महात्मा है। तो इतने बड़े प्रभावित होकर के वो बोला आप रखिए, नहीं दूंगा। तो राजमंत्री सनातन बोले देखिए साहब, आप मुझे प्रशंसा करके बोलते हैं आप रखिए, अगर आप नहीं लेंगे मुझे पास छोड़ देंगे रखेंगे, तो आप जैसा दूसरा पर्वत के बाद और कोई मिल जाएगा, वो गला कटेगा। जब तक ये रहेगा तब तक गला कटने का भय तो समझो ऊपर से नीचे घूम रहा है मेरे चारों तरफ, तो जब जाएगा मेरे से तब मैं तो निश्चिंत, फिर मेरे से कोई नर उठा के देखेगा भी नहीं, हाँ वो कोई नहीं देखेगा। जब ये बात कहे वो समझ गया, हम बात तो सही कहते हैं आपने, मैं छोड़ दूंगा दूसरा कोई पकड़ देगा, क्योंकि सभी इसी के आशा से चल दुकान इसीलिए खुले हैं लूटने के लिए, चाहे सफेद कपड़ा में चाहे काले कपड़ा में, दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो सनातन को समझ दे दिए, उन्होंने रख लिया, और फिर सनातन जी वापस आकर बोले ईशान, वो सो गया था, बेचारा उठा है, बोले उठो, लगता है एक अपने छिपा के रखा है ना, ना हजूर इमरजेंसी के लिए एक रखा था, ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा करो अब सूर्य सुबह होने वाला है, आप जाओ वापस, आप जाओ, मैं आपका साथ चलना था आपके से, नहीं आप योग्य नहीं हो, मैं उनसे मांगा जो आपके पास धन है दे दो, मुझसे छिपा करके फिर भी इतना आसक्ति है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, फिर भी तूने एक रख लिया, तो धन के ऊपर ज्यादा विश्वास है आपका, तो जाओ धन के साथ, मेरे साथ मत, मेरा तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं उसके ऊपर। ये अर्थ ऐसे है, भगवान कभी कभी कहते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं एकादश अध्याय में, बोलते मैं भी आश्चर्य होता हूं ये धन का नाम अर्थ कौन रखा, किस उसका नाम अर्थ रखा गया, वो भगवान ने खुद गिनाई, एक दो तीन चार के 16 अनर्थ है उसमें, एक से लेकर के 16 तक गिनाए, 16 अनर्थ जिसमें है उसको अर्थ कैसे कहा गया बताओ, सचमुच इतने अनर्थ को हम अनर्थ नहीं कहते हैं, अर्थ कहते हैं। अर्थ को प्राप्ति करने के लिए कितने भारी प्रयास करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, अगर प्राप्ति हो भी गया उसको रखने के लिए कितने प्रयास, कितने दर, क्या क्या करना पड़ता है, इतने प्राप्ति किए बड़ा परिश्रम करके, रखने के लिए बड़ा जी जान हाजिर करके उसको रखेंगे, अगर चला गया तो मरी जाएंगे दुख के मारे, अरे क्या क्या तकलीफ, तो कहां को रखें उसको। इसीलिए भगवान कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम, जो शांति सब चाहते हैं वो प्राप्ति से नहीं हो सकता है, वो त्याग से ही हो सकता है। कोई चीज को पाने से कभी सुख या शांति हो नहीं सकता है, ये निश्चित सिद्धांत है, निकल जाए शांति। एक बार ऐसे कहावत है, अकबर बीरबल संवाद में आया, तो अकबर ने बीरबल को पूछ रहे थे, हर प्रश्न का जवाब देता था उन्होंने, तो बोले मुझे अशांति रहता हूं, मैं इतने बड़े सम्राट हूं, सब कुछ बेचैन सा रहता हूं, शांति आप बताओ बीरबल शांति सूत्र क्या है, कब शांति मिल सकता, बाकायदा मैं शांति को थोड़ा सा अनुभव करूं कि ओह ना आई एम रियली पीसफुल, ओके फाइनली शांति, कब शांति ना, जहां पना हम शांति करा देंगे और क्या है, एक दो दिन में पता कर देंगे, बाकायदा शांति आप महसूस करेंगे। मैं कैसे, इतनी बड़ी जायदाद धन संपत्ति सब कुछ पूरे नहीं हो रहा है, आप कब, वो बोला त्याग आप शांति अनंतरम के बाद शांति मिलता है, त्याग से शांति कैसे मिल जाएगा ना, हमें मैं आपको महसूस करा दूंगा, चिंता क्यों करते हैं। दूसरे दिन बुला के ले गया कहीं भोज में, खूब खिलाया, बढ़िया से माल खिलाया ऐसा, और ऐसे ऐसे चीज खिलाया ताकि तुरंत पेट खूब भर गया। अब खाने के लिए कौन सुख नहीं महसूस करता है ना, जब प्राप्त करते हैं भोजन बढ़िया सा जो आप चाहते हैं तो बड़े ढंग से खाएंगे दो हाथ से, प्राप्ति कर गए। लेकिन प्राप्ति करते समय सुख लगा, लेकिन अंदर गया तो तुरंत उठते ही भोगे रोग भयम, डरने लगा, पता नहीं क्या होगा और क्या होगा, डायबिटीज होगा कि ये होगा कि वो होगा, तो दूर की बात है। अब भी पेट में प्रेशर आ गया, अब बाथरूम जाना है, लेकिन वह बोट में जा रहा है। अभी वो जहां भोज खाने गए थे बहुत दूर जगह, वहां से गाड़ी से आए, नौका में चढ़कर आ रहे हैं। नौका में कई सारे उनके गेस्ट ऑफ ऑनर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब उनको हाई प्रेशर। आप सोच लो अगर आप ऐसे परिस्थिति में होंगे कैसे शांति महसूस करेंगे। भले आप सम्राट से सम्राट हो, यहां तक लोड करके खा लिए हो और बहुत टॉयलेट जाने के प्रेशर कल अपने सर जोर से लगा है, आप बोलेंगे कि आपको ये 1000 रुपया का नोट माला पहनाता हूं, प्रसन्न हो जाइए, अरे रख तेरा माला, अब बाथरूम कहां है, इधर कहां है, तो नौका है, वेट करना पड़ा। अरे क्या आप स्वयं सब कुछ महसूस किया, कैसा लगता होगा आप, कितने बेचैनी, कोई अच्छे खाना पीना, कोई अच्छे सुंदर स्त्री, कुछ भी सामने आ जाए कुछ अच्छा लगेगा, मुंह तो कीचड़ बन जाएगा, ओह पूरा अशांति सब कुछ होकर के, कब जल्दी करो। आप जब बहुत बेचैनी हो गए, उठकर चिल्लाने लगा सम्राट, तो बोला खोल दिया नौका के अंदर था आटा, बोला जाइए ना, अरे इतने वो भागा, कपड़ा लता कहां कैसे हो, तो हम सभी का एक्सपीरियंस है, कभी कभी ऐसे होता है। तो जो उधर से आया, ओह माय गॉड, कैसा महसूस होता है ना, अरे क्या बताऊं बिरबल, क्या शांति हो वो ना महसूस, त्यागात शांति अनंतरम, जब डाल रहे थे ये शांति सुख ऐसा नहीं था, जो निकाल लिया जाने में जो शांति है, त्याग से जो शांति वो श्री प्राप्ति से नहीं हो सकता। जब ये चीज भी त्याग करने के शांति प्राप्त करते हैं, बाकी सारे बाहरी चीज तो और क्या है, वो तो अंदर डालते हैं, जो बाहर ला के रखते हैं उसको भी क्या अंदर जिसको डाल देते हैं उसको भी निकालने के बाद शांत तो होते हैं, और जो बाहर बटोर कर रखते हैं पास में नहीं, कोई आंख में तिजोरी में, उसको में कैसे शांति मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता। त्यागा शांति आनंद करा, शांति त्याग से ही मिलेगा, वो त्याग सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, केवल बाहरी वस्तु धन संपत्ति नहीं, यहां तक कि हमारा मन, इस देह, ये शरीर, इस घर और उसमें जो कुछ आसवाब जो कुछ है मेरा, सब कुछ गाय मुठ प्रभु तेरे चरण में सौंप रहा हूं। मारवी राखवी जो इच्छा तुहार, अब आप मुझे रखो या मारो, मुझे सम्मानित करो असम्मानित करो, जैसे भी करो तेरे इच्छा, आपके नौकर हूं। पूरे हाजिर शरणागति, ऐसे सरेंडर हो जाए, ऐसे शरणागत हो जाए, उसके बाद में जो आप चैन जो शांति प्राप्त करेंगे, इस भौतिक संसार में इस झंझाल में रहकर भी, इतने दलदल में पड़कर भी, आप जो शांति जो चैन की सांस लेंगे, उसको करोड़ों 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 अरब रुपया दे करके ये सांस नहीं ले सकते हैं। एक ही उपाय है, सब कुछ एक मिनट में नौछावर कर दो, दूसरे सेकंड में आप फील करेंगे वो। जब उनके हाथ में हमारे हाथ दे देंगे, तो फिर डर किसका है? सर्वसमर्थ है वो, लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं होता। हमारा विश्वास और ऊपर होता है, तकलीफ बहुत मिलता है हमको। इस जगत में रहते हुए हर क्षण विपद है, हर घड़ी टेंशन का रहता है, लेकिन इसे बचने के लिए सर क्या नहीं हेल्प मी, पैसा नहीं तो बैंक से लोन ले लेते हैं, कोई महाजन के पास जाते हैं और किसी के पास जाते हैं, लेकिन हरि के पास नहीं जाते हैं। और जो लोन फोन लेकर के बड़े चढ़ गए, वो बोलते हैं कि महाभाग्यशाली है, कितने बड़ी सुकृति उसका था, इकट्ठा किया इतने भोग, इतने ऐश में रहता है, सुख में रहता है। ये हम कहते हैं, भगवान कहते हैं ये बेवकूफ है। भगवान के शब्दकोश के हिसाब से सुकृतिवान कौन है, सौभाग्यवान कौन है, सौभाग्यशाली जानते हैं? भगवान गीता में कहते हैं उद्घोष करके, चतुर्विधा भजते इमाम जना सुकृतिनो वर्णः, चार प्रकार के जन्म सुकृतिवान है, बाकी सब सुकृतिवान नहीं। चार प्रकार के सुकृतिवान महासौभाग्यशाली महासुकृतिवान पुरुष चार प्रकार के हैं। कौन कौन है? सबसे पहले एक नंबर में गिनाए आर्स। आर्स किसको बोलते हैं जानते? किसको आर्स बोलते हैं? जो भय के मारे भागते फिर रहा हो, बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, मेरे पीछे ये पड़े हैं, मुझे पिटेगा मारेगा कुछ नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे भाग फिर रहा है जो अर्थ चित्कार करके। कौन हमसे इसे रास्कल होगा जो बोलेगा कि महासौभाग्यशाली है, बड़े पुण्यवान है, कोई बोलेगा? लेकिन भगवान कहते हैं कि ये पुण्यवान है, सुकृतिवान। नंबर वन सुकृतिवान में आता है आर्त का नाम। अरे कैसे? उसका मतलब कोई डर के मारे चित्कार करके फिरे तो वही सौभाग्यवान? नहीं 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 नहीं, इसके लिए नहीं कहता हूं मैंने, क्योंकि तो मेरे शरण में आ रहा है डर के मारे, और आप किसी के शरण में नहीं जा रहे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, नहीं, हे प्रभु मुझे बचाओ। भय के मारे डर के मारे जो प्रभु के शरण में जाता है, एक नंबर के सौभाग्यशाली सुकृतिवान वो है। दूसरे नंबर के सुकृतिवान अर्थार्थी, पैसा नहीं है, कुछ दे दो कुछ दे दो, भिखारी की तरह पैसा के मारे जो मांगते फिरे, वही भिखारी की तरह मांगते फिरना सबसे, ये सुकृतिवान नहीं है। लेकिन ये मांग दुनिया से किसी से ना करके प्रभु से करे, दो नंबर के सौभाग्यवान पुरुषो है महासुकृतिवान, उनसे मांगे, उनसे मांग करे। भगवान कहते मैं दू ना दू अलग बात है, लेकिन ये तो मैं डिक्लार कर बोलता हूं सुकृतिवान है, मैं उसको पैसा दूंगा कि अर्थ दूंगा नहीं दूंगा ये अलग बात है, मैं दे भी सकता हूं नहीं भी दे सकता हूं, लेकिन ये तो निश्चित है उनका नाम उठ गया सुकृतिवान में, मैं घोषणा करके बोलता हूं। चार प्रकार से दूसरा नंबर हो। तीसरा नंबर बोलते हैं जिज्ञासु, जानने के लिए, कैन यू टेल मी इसका मतलब क्या है, ये क्या है, जानने के मारे, जानने की इच्छा लेकर के ढूंढते फिरता है, इधर उधर जानना चाहता है। कई लाइब्रेरी कई आदमी इधर उधर उधर ढूंढते फिरे, ओ जिज्ञासु ये क्या सौभाग्यवान है? सौभाग्यवान है तो पता चल गया होता। नहीं नहीं नहीं, वो जब जिज्ञासा करके मेरे पास आता है, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कृपा कीजिए मुझे, हो गया तीसरा नंबर के महा सौभाग्यवान, मेरे से पूछ रहा है। और लास्ट में रखे उसका नाम क्या है? अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, वो चार नंबर का है। वो तो सब जानता ही है कि अल्टीमेट रिसोर्ट तो वही है, तो जान बुझ करके जो भगवत शरण ले बोलते, वो चार नंबर तो है ही है, उनको तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन एक नंबर दो नंबर जो देखेगा चमक जाएंगे, अरे ये किसी सौभाग्यशाली है, लेकिन यही है। तो चाहे कैसे भी हो, जेन तेन प्रकारेण मना कृष्ण निवित, जैसे भी तैसे हो अगर भगवान की शरण में जाए, भगवान के भजन में मन लगाए तो भगवान कहते हैं ये सौभाग्यवान है, ये सुकृतिवान है। बाकी जितने डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग लिखे बोलते ये सब कड़ाम कुचड़ा में जाएगा, भगवत वाक्य के सामने कोई नहीं टिक सकता है। ये साक्षात भगवत वाक्य है, गीता में कहते हैं वो सुकृतिवान है, महासौभाग्यवान है कि मेरे पास आना चाहता है आया। और सच बताएं सृष्टि आरंभ से अब तक और जब तक सृष्टि चलते रहेगा, इतिहास पुराण आदि से कोई एक प्रमाण नहीं बता सकते हैं। आपने सबने ढूंढान कर देख लीजिए, जो हरि शरण में गया उसके विनाश हो जाए कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी भी परिस्थिति में कितने दुख कष्ट सिचुएशन कितने भी क्यों हो, अगर भगवान हरि के शरण में गया तो उसका सदगति होना ही है कंफर्म। कोई एक प्रमाण नहीं है जो हरि के शरण में रह करके दुर्गति प्राप्त किया ना, और एक प्रमाण वो भी अभी तक नहीं मिल पाएगा जो हरि की छोड़ करके दूसरे देवा देवी ब्रह्मा शिव से लेकर और बाकी जितने भौतिक ब्रह्मांड में बड़े बड़े लोग किसी का शरण में एक दो चार गाय मोड़ दो चार लाखों का शरण में एक साथ में ले ले किसी का सदगति हो जाए, एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा। सब दुर्गति ही दुर्गति प्राप्त किए हैं। ये सब को देख करके जान करके पढ़ करके सुन करके हम जैसे बेवकूफ फिर भी भगवान के शरण में नहीं जाते हैं तो दूसरे के शरण में जाते हैं तो कैसे कल्याण मन होगा। और फिर अपने आप को मानते हैं हम बड़े अरहंत थे, हम समझदार हैं, हम चतुर हैं, यही हमारी स्थिति नहीं। भले भले किसी में स्थिति में क्यों ना हो, भगवान हमको कृपा करके ये जो शरीर दिए हैं जिस परिस्थिति में रखे हैं, जिस प्रकार मन, जिस प्रकार बुद्धि, जितने संपत्ति, जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार के बंधु, जिस प्रकार के सामर्थ्य दिए हैं, ये सभी को बटोर करके सभी प्रकार से सर्वोत्तभावे अगर उन्हीं शरण में जाए यही एकमात्र कल्याण की उपाय है, कल्याण पंथा है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं उसके अलावा। सारे बुद्धि, सारे समझ, सारे चतुराई, सभी का पराकाष्ठा केवल इतने में है अगर ये जान बुझ करके कैसे भी प्रकार से जैसे तैसे सब छोड़ करके मन लग गया प्रभु अब हो गया बस अभी आपके चरण में तू मुझे मार रख कुछ भी कर तू ही जाने, तो वो तो सिद्धि प्राप्त हो ही गया। मान लो उसका हो ही गया, टाइम थोड़ा फर्क है आज नहीं तो 10 दिन के बाद, 2-4 साल के बाद, लेकिन सिद्धि हो ही गया उसका निश्चित। अभी दुर्गति हो ही नहीं सकता है उसका 100% 100%। अभी अभी बताया सनक गोस्वामी जब आए कुछ भी नहीं था उनके पास, 7-8 स्वर्ण मुद्रा उसको ऐसे ही दे दिए बिना मांगे, एक वस्त्र तक नहीं था, बाथरूम किट तक नहीं था, सुबह कैसे ब्रश पेस्ट यहां तक नहीं लिए थे, साथ में एक गमछा तक नहीं लिए थे, कुछ भी नहीं था। क्या था? हरिंग कृता हृदिंग्रे हाथ, हृदय में मेरे पोषण करता पालन करता मेरे प्रभु हैं, परमात्मा रूप में हरि विद्यमान है, सर्वत्र है, उन्हीं के ऊपर पूर्ण विश्वास और आस्था लेकर के चला था। उसका दुर्गति हुआ, ये 7-8 स्वर्ण मुद्रा क्या, 7-8 हजार स्वर्ण मुद्रा लेकर के 10 दिन ही रहेगा, उसका मन नहीं भरेगा, पाप करते ही जाएगा, अंत में नरक ही जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं रखे, जो भी था मांग कर उसको भी दे दिए कंप्लीट, और केवल हरि पर विश्वास रखे। रास्ता में उनका साला मिलेगा उनको, श्रीकांत ने बोलेगा कुछ नहीं ठंडी के समय एक तो ब्लैंकेट ले लो, बहुत जबरदस्ती क्या बोले गंगा पार करा दो मुझे ना, मैं पार व्यवस्था करता हूँ, ये तो ले लो कम से कम, कुछ भी नहीं शरीर में आपका, दे दिया उसको, डाल दिए शरीर में उसको भी। जब भगवान से मिले, भगवान ने देख रहे थे सनातन को, बार बार सनातन ने सरेंडर किया, देख रहे थे, बार बार घूम फिर के देख रहे थे उसी ब्लैंकेट को। वो बहुत कॉस्टली ब्लैंकेट था, बोलते हैं भूटान के साल था वो भूट कम्बल, तभी जमाना में उसका रेट था 3 टका, 3 रुपया का था, आजकल जमाने में से 3 लाख हो सकता है। तो वहां पर उसको देख रहे थे सनातन, तो समझदार को इशारा काफी है, वो समझ गए। दूसरे दिन सुबह गए गंगा किनारे, बहुत सारे भिखारी गंगा किनारे पड़े हैं कटोरा लेकर के, एक भिखारी के पास गए, बोले भाई साहब ये साल लेना था, है इतने कीमती साल मुझे देना है क्या, पागल हो गया क्या आपने, इसको मुझे क्यों दे रहा है, आप भले आदमी लग रहे हैं भाई, ये क्यों मुझे दे रहा है ना, मैं नहीं दे रहा हूं आपसे कुछ, चाह मुझसे क्या चाह रहे हैं, ये आपको फटी हुई गोदोड़ी है ना, वो मुझे एक्सचेंज कर दे। अरे ये पूरा पागल हो गया, उसको लगा कई दिन से नहाया धोया नहीं, उसको फटे इसी चिथड़, मुझे वही दे दो, वो बदला के ले ही आए उसको, उनके ऊपर डाल के उसे खींच कर ले लिया, बोले उसको रखो आप, इतने कीमती भूटान के कंबल 3 लाख रुपया वाले जो 3 रुपया का था उसको देकर उसको कंधे में डाल करके आ गए। जब आए सब बोलते ये क्या हो गया, महाप्रभु जो देखे बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश होकर बोले सनातन मैं बोला नहीं था, आपको बोल नहीं रहा था, आपको लगेगा लेकिन आप इतने चतुर है, आप समझ गए। बोलते चीनी मुद्रा भोट गाय मधुकरी ग्रास कार्य सिद्धि नए है लोक उपहार। बोले आप तो भीख मांगकर खाता भिखारी की तरह, और कंधे में डाल रहा है इतने कीमती साल, और जाएगा भिखारी बन करके, कार्य तो सिद्धि नहीं होगा, उल्टी होगा क्या, लोग उपहास करेंगे। बोले बेशरम कहीं के, इतने कीमती चादर ओढ़कर भीख मांग रहा है खाने के लिए, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था, उसको देख रहा था, लेकिन तू भी समझ गया। कहने का आशय यह था, सनातन के सामने अगर महाप्रभु आए, साक्षात भगवान ईश्वर आ गए, तो उन्होंने आदर तो किया, अभ्यर्थना किया, स्तुति किए, लेकिन जब पूछने का कुछ बात करने का बात आया, कुछ मांगे नहीं, 3 बात उनके सामने रखे, केवल 3 बात। बोले प्रभु अगर मेरे ऊपर आप कृपा कर किए हैं, मुझे दर्शन दिए हैं, 3 मेरा इंक्वायरी है, जाट साल। सबसे पहले ये मुझे, मैं बता देता हूं आपको, सारे दुनिया में मुझे पंडित करके मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई मानी, मुझे सब बोलते हैं कि बहुत बड़े भी पंडित है, मैं भी मानता हूं बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन सच बता रहा हूं प्रभु जी, मुझे अभी तक पता नहीं मैं कौन हूं, पंडित हूं बहुत बड़े, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्यों मुझे तकलीफ मिल रहा है ये भी नहीं मुझे पता है, और क्या करने से मेरा हित होगा ये भी नहीं पता है। तो ये 3 सवाल मेरे सामने है, मुझे बताए। तो कहने का आशय यह है, अगर हम में से जितने बेवकूफ यहां है, अगर इस मनुष्य शरीर जितने तक रहेंगे, अगर लगा करके ये 3 सवाल को जब तक हम अपने आप में पूछेंगे नहीं, तब तक हमारा मनुष्यत्व ही बेकार है, साकार नहीं होता। तो इसलिए सबको प्रार्थना है, 3 प्रश्न सब अपने आप में पूछिए और उसको समाधान करने के लिए प्रयास कीजिए, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। कमलोचन प्रभु का आदेश हुआ था, अब मुझे बताया तो मैसेज में कुछ आया था, लेकिन मैं कल किताब में और कुछ देखा, मुझे जो श्लोक मुझे दिखाया प्रिपरेशन क्लास के लिए, वो था देवजानी और शर्मिष्ठा के प्रसंग, मैं बोला मुझे ये प्रसंग डाल दिए वो जजाति महाराज शर्मिष्ठा को शादी करके चले गए, देवजानी शर्मिष्ठा का झगड़ा हो रहा है, ये प्रसंग मिला, उसको कैसे बोलूं क्या करूं, चलो यही सोच के आ रहा था, लेकिन ठाकुर जी के ये हटाती आ गया सामने, ये सब ऐसे ही होता है जो भी हो। हमारा तो नित्यांत अज्ञ हूँ, असमर्थ हूँ, फिर भी प्रभु जी की कृपा प्रसाद से जो कुछ बोल दिया और जो कुछ दोष है आप अपने क्षमा गुण में माफ कर देंगे। हरे कृष्ण।